हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंकुश और गीतिका गायत्री देवी के साथ चौहान पैलेस में घुस आए थे, वरना उन्हें वहां आने की इजाज़त नहीं मिलती। गीतिका और अंकुश के भड़काने पर गायत्री देवी ने अच्छा खासा तमाशा कर दिया था। लेकिन अंकुश का इरादा सिर्फ तमाशा करने का नहीं था, वो शिवांशा से अकेले में बात करना चाहता था। गायत्री देवी से मिलने के बाद जब शिवांशा को वहां से जाने के लिए कहा गया तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाने के बजाय किसी और दरवाजे से घर के गार्डन एरिया में पहुंच गई। अचानक ही अंकुश वहां पर आ गया और उसे उसके भाई का लेकर ब्लैकमेल करने लगा। साथ ही वो ये कह रहा था कि उसे वेद सिंह चौहान को मारना होगा। अंकुश जानता था कि उसके ब्लैकमेल करने के बाद शिवांशा के ना कहने का कोई चांस नहीं था। शिवांशा कुछ भी बोलने के बजाय जोर जोर से रोने लगी। शिवांशा के चेहरे पर लाचारी के भाव देखकर अंकुश बोला, अब डरने या घबराने का कोई फायदा नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ उसने तुमसे शादी नहीं की है। दुनिया के सामने कितना भी पति पत्नी होने का दिखावा कर लो, लेकिन सच यही है कि तुम देवराज ठाकुर की पोती हो और वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। शिवांशा की नजरें झुक गई थीं, उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। चाहकर भी वो इस सच को बदल नहीं सकती थी कि वो वेद की पत्नी नहीं है। अंकुश ने गहरी सांस ली और कहा, जानती हो ना, ना कहने पर क्या होगा? बोलो, मेरे लिए वेद को मारोगी या नहीं? शिवांशा घबराते हुए ना में सिर हिलाने लगी, लेकिन अंकुश ने उसकी बात सुनने से पहले ही कहा, तो तुम्हें उस पर दया आ रही है? पहले ही बता दूं कि वो तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। ज्यादा मत सोचो और हाँ कह दो। वैसे भी कौन सी नई बात है, सालों पहले तुम्हारे दादा ने उसके माँ बाप को मार दिया था। अब उनकी पोती उन्हीं के काम को आगे बढ़ाएगी। वेद के मरते ही पूरी चौहान फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तुम नहीं करोगी तो ये काम कोई और कर देगा। हाँ, लेकिन इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर ही आएगा, तो बेहतर यही होगा कि उसे तुम ही मारो। तुम अपने हाथों से मारोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल लूँगा और तुम्हारे भाई को भी कुछ नहीं करूँगा। सोच लो क्या करना है। उसकी बात सुनकर शिवांशा की आंखें डर से फैल गई थीं। वो जानती थी कि अंकुश जो भी बोल रहा है वो वैसा कर सकता है। उसकी हैवानियत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। गुड गर्ल, माई लिटिल गर्ल, अंकुश ने मुस्कुराते हुए बोला और उसने जबरदस्ती शिवांशा के हाथ में एक बोतल पकड़ा दी। इसकी दो बूंद काफी होगी उसकी जान लेने के लिए। जितना जल्दी मेरा काम करोगी उतनी ही जल्दी आज़ादी मिलेगी। मजबूरी में ही सही, शिवांशा ने वेद की जान देने के लिए हाँ कह दी थी। अंकुश वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया तो वहीं शिवांशा रोते हुए घुटनों के बल वहीं गार्डन में बैठ गई थी। उसकी साड़ी में मिट्टी लग गई थी, लेकिन उसे उसका भी ख्याल नहीं था। शिवांशा ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, क्या इतने सालों में एक पल के लिए भी आपको मेरे ऊपर दया नहीं आई? जानती हूँ मैंने आपसे बहुत बार शिकायत की है, लेकिन कभी भी आपने मेरे दिल की कहाँ पूरी की है। पहले से ही हमारा परिवार एक दाग लेकर जी रहा था, अब मुझे भी वही करना पड़ेगा। अपने भाई के चलते मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। ऐसा भी नहीं कि इसे पीकर मैं अपनी जान दे दूँ। अगर मैं मर गई तो मेरे पीछे से रोहन का क्या होगा? हर बार की तरह शिवांशा को अपनी मौत के बजाय जिंदगी को चुनना पड़ा, वो जिंदगी जो मौत से बदतर थी। वो अगर अब तक इतनी दर्द भरी जिंदगी जी रही थी तो सिर्फ अपने भाई के लिए, वरना अब तक वो कब की खुद को खत्म कर चुकी होती। हमेशा की तरह जब ऊपर से कोई जवाब नहीं आया तो शिवांशा बच्चों की तरह घुटनों में सिर रखकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ गीतिका, अंकुश और गायत्री देवी वहां से निकल चुके थे। इस बीच अक्षत भी वहां पर आ चुका था। उनके जाते ही वेद ने अपनी फैमिली की तरफ देखा। अंकुश ने बातों ही बातों में उन लोगों के सामने ये सच्चाई खोल कर रख दी थी कि शिवांशा राजावत खानदान की होने वाली बहू थी। मजबूरी में ही सही, लेकिन वेद ने उस वक्त यही कहा था कि वो और शिवांशा पहले से प्यार करते थे। अब तक भले ही वो वेद का लिहाज करते हुए कुछ नहीं पूछ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल साफ नजर आ रहे थे। वेद ने गहरी सांस ली और उन सब की तरफ देखकर कहा, वो अनाथ है, दिल्ली में राजावत फैमिली के छोटे भाई के बेटों अरमान और मनन के साथ रहती थी। एक्चुअली मनन मेंटली थोड़ा सिक है तो वो उसकी केयर गिवर थी। हम दोनों की मुलाकात लगभग 5 महीने पहले हुई थी, जहां शिवांशा ने मुझे बताया कि उसके अनाथ होने की वजह से राजावत फैमिली उसे प्रेशराइज कर रही है शादी करने के लिए। अगर ऐसा था तो आप पहले ही उससे शादी करके हमें उससे इंट्रोड्यूस करवा सकते थे, नव्यांशी ने हैरानी से सिर हिलाकर कहा। हाँ, मिला सकता था, लेकिन एक मोमेंट पर शिवांशा ने हार मान ली थी। उस पर राजावत फैमिली के कुछ ज्यादा ही एहसान थे, इस वजह से उसे शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन शादी के दिन भी उसे समझ आ गया था कि उसने गलत फैसला लिया है। बस तभी उसने मुझे एक कॉल किया और मैं पहुंच गया था। वेद ने उन्हें एक झूठी कहानी सुनाई, हालांकि पीछे से उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और उसे गुस्सा आ रहा था। वो शिवांशा के चक्कर में अपने भाई बहनों से कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहा था, जो कि उसके उसूलों के सख्त खिलाफ था। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि आप अपने बर्थडे के दिन अचानक से कहाँ गए थे। यही वजह थी कि गीतिका और अंकुश इतने बौखलाए हुए यहाँ पर आए थे, नव्यांशी ने वेद की तरफ देखकर कहा। आपने बहुत अच्छा किया भाई, जो शिवांशा भाभी की लाइफ बचा ली और साथ ही उससे शादी भी की बगैर ये परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। नव्यांशी के शब्द सुनकर वेद की आंखें एक पल के लिए बर्फ के समान सर्द होने लगीं। हाँ, उसने शिवांशा की जान बचाई थी, लेकिन उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से मारने के लिए। वेद ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। तभी अक्षत बोला, जो भी हो भाई, वो इस घर की बहू है और हम सब के लिए बहुत खास हैं। बड़ा भाई पिता के समान होता है, बस यही सोचकर हमने आपके पापा की जगह दी है। अब भाभी को माँ की जगह नहीं दे सकते क्योंकि वो हम सबसे छोटी है, पर वो भी इज्जत की हकदार है। हम नहीं चाहते कि कल को अंकुश गीतिका जैसे लोग उठकर आएं और भाभी और आपके रिश्ते पर सवाल उठाएं। पहली बार कोई अकल की बात की है, नव्यांशी उसे चिढ़ाते हुए बोली। फिर उसने वेद की तरफ देखकर कहा, सबको यही लगता है कि आप शिवांशा भाभी को इसलिए छुपा कर रख रहे हैं क्योंकि वो आपसे उम्र में छोटी है। कम ऑन भाई, एज इज जस्ट अ नंबर। हमें सबको शिवांशा भाभी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। लेट्स थ्रो अ ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी। आई अग्री विद यू नवी, वंश उसके साथ देता हुआ बोला। रिसेप्शन पार्टी तो बनती है और इतनी शानदार होगी कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती थी कि एक रिसेप्शन पार्टी तो होनी चाहिए। अंकुश और गीतिका जैसे लोगों का मुंह तभी बंद होगा। आराध्या ने भी उनकी बात पर सहमति जताई। फिर उन सब ने वेद के चेहरे की तरफ देखा, उन्हें उसके हाँ का इंतजार था। जब तक वेद हामी नहीं भरता, वो कोई काम नहीं करते थे। फिर यहाँ तो बात उसी से जुड़ी हुई थी। एक बड़ी रिसेप्शन पार्टी थ्रो करके शिवांशा को सबसे इंट्रोड्यूस करने का मतलब था कि उसे और लोगों की नज़रों में लेकर आना। वैसे भी मीडिया के चक्कर में उनकी नकली शादी सबके सामने आ चुकी थी। वेद उन्हें इस पार्टी के लिए मना करना चाहता था, लेकिन तभी अक्षत ने पपी फेस बनाकर कहा, प्लीज ना मत कीजिएगा।
वेद ने बिना कुछ कहे हाँ मैं सिर हिला दिया, तो वो सब खुश हो गए। वहीं वेद को शिवांशा से बात करनी थी, तो वो वापस उसी कमरे में आया जहां उसने आखिरी बार शिवांशा को छोड़ा था। उसे लगा कि शिवांशा दादी से मिलने के बाद वहीं पहुंची होगी, लेकिन कमरा खाली था। यहां तक कि शिवांशा ने खाना भी पूरा हत्म नहीं किया था। अब कहां चली गई? इसके चक्कर में मुझे अपने भाई बहनों को धोखे में रखना पड़ रहा है, वेद ने गुस्से में मुठ्ठियां बांधते हुए कहा। फिर उसने एक नज़र खिड़की से बाहर देखा तो उसे गार्डन एरिया में शिवांशा नजर आई, जो घुटनों में सिर रखकर बैठी थी। अब ये यहां क्या कर रही है? किसी ने देख लिया तो फिर से सवालों की झड़ी लगा देंगे, वेद ने मन ही मन कहा। चौहान पैलेस को मॉडर्न लुक देने के लिए पुराने महल को काफी हद तक तोड़फोड़ करके बदल दिया गया था, लेकिन वेद ने आज भी कुछ रास्ते बंद नहीं करवाए थे जो पुराने महल के हिसाब से भूल भुलैया की तरह बने हुए थे। वेद जानता था कि उसे सबकी नज़रों से बचकर शिवांशा के पास कैसे पहुंचना है। अगले 5 मिनट में वेद शिवांशा के सामने था। उसने शिवांशा को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उसे हवा में ही रोक लिया था। वेद को लगा कि उसके छूने से शिवांशा एक बार फिर से घबरा जाएगी। यहाँ क्या कर रही हो? वेद ने धीमी सख्त आवाज में पूछा। शिवांशा ने अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। रोने की वजह से उसका पूरा मुंह लाल हो गया था और आंखें हल्की सूज गई थीं। वेद ने आइज रोल की और कहा, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जब देखो रोती रहती हो। अंकुश की वजह से डर रही हो? अंकुश का नाम सुनकर शिवांशा के चेहरे पर डर के भाव उभर आए थे। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं वेद को अंकुश और उसकी डील के बारे में तो पता नहीं चल गया होगा। शिवांशा के चेहरे पर डर के भाव देखकर वेद ने गहरी सांस ली और कहा, एक बात याद रखो, जब तक तुम चौहान पैलेस में हो तब तक कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अब यहां से खड़ी हो जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कपड़ों में मिट्टी लग गई है और चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने लाल रंग रगड़ दिया हो। शिवांशा जल्दी से उठकर बैठी और अपने कपड़ों को सही करने लगी। वो वापस अंदर जाने को हुई तभी वेद बोला, यहां से गई तो सबकी नज़रों में आ जाओगी, मेरे पीछे आओ। शिवांशा बिना कुछ बोले वेद के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही देर में वो वापस उसी कमरे में थे जहां आखिरी बार वेद ने शिवांशा को खाने के साथ छोड़ा था। वेद ने प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, इसे खत्म क्यों नहीं किया? मैंने आपको पहले ही कहा था कि खाना बहुत ज्यादा है, मेरा पेट भर गया था तो नहीं खाया। शिवांशा ने नजरें झुकाकर धीमी भरी आवाज में कहा, रोने की वजह से उसका गला थोड़ा बैठ गया था। हाँ, तुम्हें खाना खाने की क्या जरूरत है, आंसुओं से जो अपना पेट भर लेती हो। तुमने इसे आधा भी खत्म नहीं किया है। खैर छोड़ो, रात को डिनर कर लेना, वेद ने जवाब दिया। वो शिवांशा की इतनी भी परवाह नहीं जताना चाहता था कि उसे किसी तरह की गलतफहमी हो जाए। शिवांशा अपनी प्लेट को उठाकर वहां से जाने को हुई, तभी वेद ने पीछे से कहा, दो दिन बाद रिसेप्शन पार्टी है। मैं इस नकली शादी का तमाशा नहीं लगाना चाहता था, लेकिन सबके सामने आने की वजह से अब रोक भी नहीं सकता। उम्मीद है कि तुम सबके सामने का दिखावा कंटिन्यू करती रहोगी। शिवांशा के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसे अंकुश ने भी दो दिन का टाइम दिया था। देखा जाए तो उसके पास अच्छा मौका था, जब वो रिसेप्शन पार्टी में वेद को जहर देने के बाद आराम से वहां से निकल सकती थी। भले ही चौहान फैमिली के लिए ये रिसेप्शन पार्टी एक खुशी का मौका था, लेकिन ये अंकुश की सोची समझी साजिश थी जो वो गायत्री को सिखाकर वहां पर लेकर आया था। वो जानता था कि उनके भड़काने के बाद चौहान फैमिली जरूर किसी तरह की पार्टी थ्रो करेगी। इससे अच्छा मौका उसे कहाँ मिल सकता था जब वेद सबके सामने अपना दम तोड़ दे। पार की रात की कहानी। क्या सच में शिवांशा वेद की जान ले लेगी? उसे तो इतना डर लगता है कि वो सच भी नहीं बता पाएगी। देखते हैं रिसेप्शन पार्टी में क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये नॉवल पसंद आ रही होगी। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।